आइए अब हम विदेशी प्रभुत्व के अंत का प्रयत्न इस पर चर्चा करें। नानकिंग की क्यूमिंगतिंग सरकार के सम्मुख एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह भी था कि चीन में विदेशी राज्यों के जो अनेक प्रकार के प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित है उन्हें नष्ट किया जाए। इसके लिए उद्योग क्यूमिंगतांग दल के उत्कर्ष के पहले ही आरंभ हो चुका था। 1914 से 18 के महायुद्ध की समाप्ति पर जर्मनी के विशेषाधिकारों का चीन से अंत हो गया था। चीन ने जर्मनी के साथ पृथक रूप से जो संधि की थी उसमें जर्मन सरकार ने अपने सब विशेषाधिकारों को छोड़ देने की बात को स्वीकृत कर लिया था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई थी। इस क्रांति के कारण रूस के लिए यह संभव नहीं रहा था कि वह मंचूरिया और मंगोलिया में अपने विशेषाधिकारों व आधिपत्य को कायम रख सके। बोल्शेविक क्रांति के कारण 1919 से 21 के वर्षों में रूस में जो अव्यवस्था फैल गई थी उसका लाभ उठाकर चीन ने बाह्य मंगोलिया के प्रदेश पर जो पहले रूस के आधिपत्य में था अपना कब्जा कर लिया। चीनी सरकार को बॉक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप हर्जाने की जो रकम रूस को प्रदान करनी थी उसकी किस्त को देना 1920 में बंद कर दिया गया था। इस दशा में रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने भी यह उचित समझा कि चीन के साथ नई प्रकार की संधि कर ली जाए। चीनी और इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त, रूसी नागरिकों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति द्वारा जो विशेषाधिकार चीन में प्राप्त हैं उनका अंत कर दिया जाए। पहली शर्त इस प्रकार थी, रूसी नागरिकों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति द्वारा जो विशेषाधिकार चीन में प्राप्त हैं उनका अंत कर दिया जाए। चीन में निवास करने वाले रूसी लोग चीनी कानून और चीनी अदालतों की अधीनता में आ जाएं। दूसरी शर्त थी, बॉक्सर युद्ध के कारण जो हर्जाना चीन ने रूस को देना था उसको वसूल ना किया जाए। तीसरी शर्त थी, चाइनीज ईस्टर्न रेलवे जिस पर पहले रूस का अधिकार था अब चीन को सौंप दिया जाए। चीन के लिए ये अनुकूल थी। जिस प्रकार जर्मनी के विशेषाधिकारों का महायुद्ध के कारण अंत हो गया था वैसे ही बोल्शेविक क्रांति के कारण अब रूसी विशेषाधिकारों का भी अंत हो गया। रूस की कम्युनिस्ट सरकार साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह यह तो चाहती थी कि संसार में सर्वत्र समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो पर वह पूंजीवादी देशों के समान व अन्य देशों पर अपना अधिपत्य स्थापित करने की नीति को नहीं अपनाना चाहती थी। ये साथ ही इस समय रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में भी नहीं थी कि अन्य देशों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख सके। इसके लिए रूस के विस्तृत प्रदेशों में भी व्यवस्था को स्थापित करना कठिन हो रहा था। चीन को रूस की इस दशा से बहुत लाभ हुआ और वह रूसी आधिपत्य से छुटकारा प्राप्त करने में बहुत कुछ समर्थ हो गया। आइए अब हम वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। अब चीन के सम्मुख प्रधान समस्या यह थी कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि अन्य विदेशी राज्यों ने जो विशेषाधिकार वहां प्राप्त किए हुए थे उनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। पेरिस की संधि परिषद में चीन के प्रतिनिधि ने इस संबंध में जो प्रयास किया वह असफल रहा था। अब इसके लिए अगला अवसर वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस द्वारा उपस्थित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था और इसका प्रधान प्रायोजन पूर्वी एशिया के साथ संबंध रखने वाली विविध समस्याओं पर विचार करना था। 1914 से 18 के महायुद्ध के बाद जापान पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील था और इसके कारण अमेरिका के साथ उसका विरोध निरंतर बढ़ता जा रहा था। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि पूर्वी एशिया के साथ संबंध रखने वाली विविध समस्या पर विचार कर शांतिपूर्वक उनका समाधान किया जाए। 11 नवंबर 1921 को इस कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन वाशिंगटन में शुरू हुआ। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इन 5 प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त चीन, बेल्जियम, हॉलैंड और पुर्तगाल के प्रतिनिधियों को भी पूर्वी एशिया के संबंध में विचार करने के लिए निमंत्रित किया गया। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस के संबंध में हम आपको बता रहे हैं। आइए अब हम इसमें उन शर्तों की बात करें, उन निर्णयों की जो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस के रूप में हमारे सामने आई। चीन के संबंध में जो निर्णय इस कॉन्फ्रेंस में हुए वे 9 राज्यों की संधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। और पहली शर्त है, सब राज्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राज्य है, उसे अपने संपूर्ण प्रदेशों का शासन करने का अधिकार है। दूसरी बात, सब राज्यों को चीन में व्यापार कर सकने का एक समान अवसर होना चाहिए। तीसरी बात, कोई राज्य चीन के किसी विशिष्ट प्रदेश में अपने प्रभाव क्षेत्र कायम करने का प्रयास न करे। चौथी बात, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में यदि भविष्य में कोई युद्ध हो और चीन उसमें उदासीन रहना चाहे तो उसकी उदासीनता सत्ता को सब राज्य स्वीकार करे। 9 राज्यों की संधि के संबंध में इन 4 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था और इनके कारण चीन को इस बात का भरोसा हो गया था कि भविष्य में शक्तिशाली राज्य उसके प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। पर चीनी सरकार के सम्मुख अधिक गंभीर समस्या उन विशेषाधिकारों की थी जो अब तक विदेशी राज्यों द्वारा चीन में प्राप्त किए जा चुके थे। इन समस्याओं के संबंध में जो निर्णय वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में दिए गए वो इस प्रकार हैं। पहला निर्णय, चीन के प्रतिनिधि चाहते थे कि शानतुंग प्रांत में जापान के विशेषाधिकारों पर वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में विचार किया जाए। महायुद्ध के समय में जापान ने इस प्रांत में किस प्रकार अपने प्रभाव व प्रभुत्व की स्थापना कर ली थी, इस पर हम बात कर चुके हैं। इसी समस्या का संतोषजनक रूप से समाधान न हो सकने के कारण चीन ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जापान के प्रतिनिधि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में भी शानतुंग के प्रश्न पर विचार करने को तैयार नहीं थे। इस पर अमेरिका ने चीन और जापान दोनों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे पृथक रूप से आपस में मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। विचार विमर्श के बाद चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला किया कि जर्मनी के पास कियाउ चाऊ आदि के जो प्रदेश पट्टे पर थे और जिन्हें बाद में जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे चीन को वापस कर दिए जाए। इन प्रदेशों में जर्मन सरकार की जो संपत्ति थी वह भी चीन को प्राप्त हो जाए। पर इस संपत्ति में जो वृद्धि जापान ने पिछले दिनों में कर ली थी उसके लिए जापान को मुआवजा दिया जाए। कियाउ चाऊ क्षेत्र के बंदरगाह तिसिंग ताओ में जापान को अपने दूतावास के लिए जो इमारतें चाहिए उन्हें जापान अपने पास रख सके। साथ ही इस प्रदेश में स्कूल, मंदिर आदि के लिए जो इमारतें जापान अपने पास रखना चाहे उन्हें भी रखने का उसे अधिकार हो। शानतुंग में जापान की जो भी सेनाएं हैं उन्हें 6 महीने के अंदर वापस बुला लिया जाए और इस बीच में चीनी सरकार इस बात की समुचित व्यवस्था कर ले कि उसकी अपनी सेनाएं इस प्रांत में जापानी नागरिकों और रेलवे आदि की रक्षा करने में समर्थ हो जाए। शानतुंग प्रांत में जापान की जो रेलवे तिसिंग ताओ से तिसिंग नान तक मौजूद है वह चीन को मिल जाए, पर उसकी कीमत चीन जापान को अदा कर दे। जब तक यह कीमत अदा ना हो जाए तब तक इस रेलवे का ट्रैफिक मैनेजर जापान द्वारा नियुक्त हो और इस रेलवे के हिसाब को रखने के कार्य में भी जापान सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का हाथ रहे। इसमें संदेह नहीं कि शानतुंग प्रांत के संबंध में जो समझौता इस समय हुआ उसके द्वारा इस प्रांत में चीन का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस समझौते को क्रिया में परिणित करने में समय लगा और 1929 तक ये बातें क्रियान्वित नहीं हो सकी। दूसरा जो निर्णय वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में दिया गया वह इस प्रकार है, 9 राज्यों की संधि द्वारा जो सिद्धांत तय किए गए थे उनके अनुसार अन्य प्रकार से भी चीन में विदेशी राज्यों के अनेक विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। बॉक्सर युद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यों की सेनाएं पेकिंग में रहने लगी थी। पेकिंग आने जाने वाले रेल मार्गों की रक्षा भी विदेशी सेनाओं द्वारा की जाती थी, ताकि वहां आने जाने में विदेशी लोगों को किसी प्रकार का भय ना रहे। पेकिंग के अतिरिक्त जिन अन्य नगरों तथा प्रदेशों में विदेशी लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते थे, वहां भी विदेशी सेनाएं स्थापित कर दी गई थी। चीन के बंदरगाहों और चीनी समुद्र तट पर भी विदेशी जंगी जहाज पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत किया गया कि इस बात का अनुसंधान किया जाए कि इन सेनाओं की चीन में सत्ता किस अंश तक पुरानी संधियों के अनुकूल है। साथ ही जिन स्थानों पर चीनी सरकार इस बात का प्रबंध कर सकती है कि विदेशी लोगों की जान व माल सुरक्षित रहे, वहां से विदेशी सेनाओं को धीरे धीरे हटा लिया जाए। इस प्रस्ताव को क्रिया में परिणत करने में भी पर्याप्त समय लगा, पर इसमें संदेह नहीं कि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस द्वारा विदेशी सेनाओं को चीन से हटा लेने के कार्य को शुरू करने का सूत्रपात अवश्य हो गया। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जो तीसरे निर्णय दिए गए वह इस प्रकार है। चीन में अनेक विदेशी राज्य पोस्ट ऑफिसों का भी अपनी ओर से संचालन कर रहे थे, पर इस समय तक चीनी सरकार ने अपनी पोस्टल सर्विस को सुव्यवस्थित रूप से संगठित कर लिया था। अतः वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में यह भी निश्चय किया गया कि धीरे धीरे विदेशी पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। चौथा निर्णय इस प्रकार था। चीन के जो अनेक प्रदेश विदेशी राज्यों ने लंबे समय के लिए पट्टे पर प्राप्त किए हुए थे, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में उन पर भी विचार किया जाए। कियाउ चाउ के प्रदेश पर से जापानी पट्टे को अंत कर देने के संबंध में समझौता हो ही चुका था। अब फ्रांस ने इस मत को स्वीकार किया कि क्वांगचाउ की खाड़ी पर से वह अपने पट्टे के अधिकार का परित्याग कर देने को तैयार है। इसी प्रकार ब्रिटेन ने वेई हाई वेई पर से अपने पट्टे का अंत कर देने की इच्छा प्रकट की। पर जब इन निर्णयों को क्रिया में परिणत करने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो इन प्रदेशों ने कहा, जब तक अन्य सब राज्य भी अपने अपने पट्टों का अंत नहीं कर देते, तब तक उनके लिए भी यह संभव नहीं है कि वे अपने विशेषाधिकारों को छोड़ सके। इसके लिए 1939 और उसके बाद तक भी चीन के विविध प्रदेशों पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्व कायम रहा। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस का पांचवा निर्णय, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति से चीनी लोगों में बहुत असंतोष था। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय हुआ कि एक कमीशन नियत किया जाए जो चीन में विद्यमान न्याय पद्धति का अनुसरण करके यह बताए कि विदेशी राज्यों के नागरिकों को चीनी कानूनों और चीनी अदालतों के अधीन कर सकना किस हद तक संभव है। यह कमीशन 1925 से पहले अपने कार्य को आरंभ नहीं कर सका, क्योंकि इस समय आंतरिक कलह के कारण चीन में बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी। कमीशन ने आवश्यक अनुसंधान के बाद यह निर्णय किया कि पहले चीन में कानूनों का आधुनिक ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए, तभी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का अंत करना संभव होगा। पर क्योंकि कानूनों और अदालतों के संबंध में चीन कुछ अंशों में उन्नति कर चुका है, अतः धीरे धीरे इस पद्धति का अंत किया जाए। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस की छठा निर्णय इस प्रकार थी। तट करों के संबंध में चीनी सरकार की यह मांग थी कि उनका पूर्ण रूप से चीन को सौंप दिया जाए और चीनी सरकार को इन करों का निर्धारण करने में पूरी स्वतंत्रता हो। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में यह बात तो स्वीकार नहीं की गई, पर इस संबंध में निम्नलिखित नीति का निर्धारण किया गया। तट कर की दरों में परिवर्तन किया जाए। तट कर के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सब विदेशी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो, किसी राज्य से अधिक व किसी से कम तट कर ना लिए जाए। चीन के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल ले जाने या एक ही प्रांत में एक स्थान से दूसरे स्थान माल को भेजने पर जो टैक्स लगते हैं, इनको लीकिंग टैक्स कहते थे, उनको नष्ट कर दिया जाए और उनके स्थान पर तट कर की मात्रा में 2% की वृद्धि कर दी जाए। इन सब बातों के संबंध में विस्तृत रूप से विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की आयोजन की जाए, पर अनेक बार प्रयत्न करने पर भी टक्करों के विषय में विदेशी राज्यों के साथ ऐसे समझौते नहीं हो सके जिनसे चीन की सरकार को संतोष हो। इस संबंध में चीन को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने का यह परिणाम हो सकता था कि विदेशी राज मनमानी तरीके से चीन में अपने व्यापार को विस्तार न दे पाते। इस बात को वह किसी दशा में सहने के लिए तैयार नहीं थे और पुरानी संधियों के नाम पर वे टटकर पर अपना नियंत्रण रखने के लिए कटिबद्ध थे। इस मामले में चीनी सरकार और विदेशी राज्यों में समझौता हो सकना बहुत कठिन था। टटकरों की दरों में परिवर्तन करने के मामले में सब विदेशी राज्य परस्पर मिलकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि इस विषय में उन सबके हित एक थे। पर अब चीन की सरकार ने विविध राज्यों से सम्मिलित रूप से बात ना करके अलग अलग समझौता करने की नीति का अनुसरण किया। 16 अप्रैल 1926 को चीन की ओर से बेल्जियम के राजदूत को यह नोटिस दिया गया कि चीन और बेल्जियम की व्यापार संबंधी संधि अक्टूबर में समाप्त हो जाएगी और चीन इस अवधि के बाद जो नई संधि करेगा उसमें उसे अधिकार होगा कि वह संधि की शर्तों में परिवर्तन कर सके। बेल्जियम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि चीन को स्वेच्छापूर्वक संधि की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। बेल्जियम की सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रसंघ के अधीन स्थापित किए गए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के सम्मुख निर्णय के लिए उपस्थित करना चाहा। पर चीन का कहना था कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख न्याय के लिए पेश किया जाए। चीन और बेल्जियम की संधि की अवधि जब समाप्त हो जाएगी तो उस संधि की अवधि को बढ़ाने या ना बढ़ाने या परिवर्तित शर्तों पर नई संधि करने का चीन को पूरा अधिकार है। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले पर विचार शुरू नहीं हुआ था कि बेल्जियम और चीन ने आपस में समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार तिनतिशिन में बेल्जियम का जो अधिकृत प्रदेश था वह चीन को वापस दे दिया गया। दूसरी, चीन में निवास करने वाले बेल्जियम के नागरिकों का न्याय चीनी अदालतों द्वारा हो यह स्वीकार किया गया। और तीसरी, व्यापार के संबंध में दोनों देश में जो मतभेद थे उन सब का फैसला कर लिया गया। चीन के इतिहास में यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कारण कम से कम एक विदेशी राज्य ने चीन के इस दावे को स्वीकृत कर लिया कि वह अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और उसे भी विदेशी लोगों से बराबरी का व्यवहार या बर्ताव करने का अधिकार है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और ब्रिटेन, फ्रांस, जापान के समान उसका प्रभुत्व भी चीन में अधिक नहीं था। इसलिए सबसे पूर्व चीन को उसी ही इस प्रकार समझौता करने के लिए विवश कर सकने में सफलता प्राप्त हो गई थी। ज्यों ज्यों अन्य विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों की अवधि समाप्त होती गई, चीनी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी नई संधियां उनके साथ की जाए वे इस ढंग की हो जैसे कि दो स्वतंत्र और समकक्ष राज्यों के बीच में की जाती है। 1927 में फ्रांस, जापान और स्पेन के साथ की गई पुरानी संधियों की अवधि समाप्त हुई और चीन की सरकार ने उन पर इस बात के लिए जोर दिया कि नई संधियों में चीन के साथ स्वतंत्र व समकक्ष राज्य के सदृश व्यवहार किया जाए। इस समय तक चीन में क्यूमिंगतांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उग्र राष्ट्रीय विचार रखने वाले इस दल ने नानकिंग में अपनी सरकार की स्थापना कर ली थी। क्यूमिंगतांग सरकार का कर्तृत्व। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा चीन में जो क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ था उसके प्रधान उद्देश्य चीन की राष्ट्रीय एकता और पूर्ण स्वतंत्रता थे। इसलिए जब क्यूमिंगतांग दल ने नानकिंग में अपनी सरकार स्थापित की और पेकिंग को भी अपने अधीन कर लिया तो उसने चीन को विदेशी प्रभाव और प्रभुत्व से मुक्त करने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया। चीनी जनता में वृद्ध 1930 लोगों के प्रति विरोध की भावना बहुत अधिक उग्र थी। विशेषतः नवयुवक विद्यार्थी अपने देश में ब्रिटेन के प्रभाव व प्रभुत्व को अत्यंत अनुचित समझते थे। इसलिए चीनी जनता की ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई। विद्यार्थियों के नेतृत्व में चीन की जनता ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का भी आरंभ किया। इस दशा में ब्रिटेन की सरकार ने यह अनुभव किया कि चीन के संबंध में अधिक उतार नीति का अवलंबन करना आवश्यक है। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में जो निर्णय हुए थे न केवल उन्हें ही पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाए अपितु तो उनसे भी आगे बढ़कर चीन की जनता को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। 1928 और 29 में विविध समयों पर ब्रिटेन और इटली आदि विदेशी राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया कि टटकर के संबंध में चीनी सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1930 में जापान और हॉलैंड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। फ्रांस और स्पेन ने 1927 में ही इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। 1930 के अंत तक यह व्यवस्था आ गई थी कि चीन की सरकार को टटकर की दर को स्वेच्छापूर्वक निर्धारित कर सकने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो। 1929 में ही चीन ने टटकर के संबंध में अपनी नीति का निर्धारण कर लिया था और भविष्य में आयात और निर्यात माल पर किन दरों से कर वसूल किया जाए इसकी घोषणा कर दी थी। जापान और हॉलैंड के विरोध के कारण ये नई दर तुरंत प्रयोग नहीं की जा सकी थी, पर जब 1930 में इन देशों ने भी टटकर के संबंध में चीन के अधिकार को स्वीकृत कर लिया तो नई दरों को प्रयोग में लाने में कोई बाधा शेष नहीं रह गई। इस समय से टटकर और व्यापारिक नीति से विषय में चीन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। टटकर संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ क्यूमिंगतांग सरकार इस बात के लिए भी प्रयत्नशील थी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का भी अंत किया जाए। 28 दिसंबर 1929 को नानकिंग सरकार ने निश्चय किया कि विदेशी लोगों को अपने मुकदमों का अपने देश की अदालतों द्वारा फैसला करने का जो अधिकार है उनका अंत कर दिया जाए। इस निर्णय की सूचना विदेशी राज्यों के राजदूत को भेज दी गई। एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का अंत करने के लिए 1 जनवरी 1930 का दिन नियत किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के राजदूतों ने चीनी सरकार की सूचना का उत्तर दिया कि वे सिद्धांत रूप से एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का अंत करने के लिए सहमत है, पर इसके लिए अधिक समय की अपेक्षा होगी। यदि क्यूमिंगतांग सरकार इस समय अपनी विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष में बुरी तरह ना फंसी होती तो विदेशी राज्य को अपने निर्णय को तुरंत स्वीकार करने के लिए विवश कर सकती थी, पर 1930 का सारा साल विदेशी राजदूतों के साथ बातचीत में ही निकल गया। अंत में उनके साथ यह समझौता हुआ कि 1 जनवरी 1932 को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का अंत कर दिया जाए और इस बीच में चीन को यह चाहिए कि वह अपने सब कानूनों का नए ढंग से निर्माण कर ले और अपनी अदालतों को भी आधुनिक ढंग से तैयार करे। पर 1931 में चीन की क्यूमिंगतांग सरकार जापान के साथ संघर्ष में बुरी तरह से उलझनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस समय जापान मंचूरिया में अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने के लिए प्रयासरत था। इस स्थिति में 1 जनवरी 1932 को भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी पद्धति का अंत नहीं किया जा सका। चीन के जो अनेक प्रदेश विदेशी राज्यों को लंबे पट्टे पर प्राप्त थे या जिन चीनी नगरों में विदेशियों के निवास के लिए पृथक क्षेत्र बने थे और उन क्षेत्रों पर विदेशी राज्य अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी समझते थे, उनका अंत कर देने के लिए भी क्यूमिंगतांग सरकार प्रयत्नशील थी। 1929 में चिंगक्यांग और अमोय पर से ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र का अंत किया गया और 1930 में बेई हाई वेई पर चीन का प्रभुत्व फिर से स्थापित हुआ। 1931 तक संपूर्ण चीन में केवल 13 प्रदेश ऐसे रह गए जो विदेशी राज्यों के प्रभुत्व प्रभाव क्षेत्र में थे। इनमें सबसे अधिक महत्व का प्रदेश शंघाई का वह हिस्सा था जिसे अंतर्राष्ट्रीय बस्ती इंटरनेशनल सेटलमेंट कहते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय बस्ती में 40,000 के लगभग विदेशी बसते थे और इसके चीनी निवासियों की संख्या 10 लाख से भी ऊपर थी। इस विशाल बस्ती का प्रबंध एक म्यूनिसिपल काउंसिल के हाथों में था, जिसके सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार केवल विदेशी लोगों को ही प्राप्त था। शंघाई चीन के समुद्र तट पर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। शंघाई के समुद्र तट पर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण चीनी सरकार इस बात के लिए प्रयासरत थी इस बस्ती को भी अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाया जाए। 1928 में किमिंगतांग सरकार के प्रयत्न से यह बात तय हुई कि शंघाई के म्यूनिसिपल काउंसिल में चीन के 3 सदस्य भी रहा करें। 1930 में चीनी सदस्यों की संख्या 3 से 5 कर दी गई। इसी समय यह भी कोशिश की गई कि चीनी सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिए जो अनेक कानून बनाए गए हैं उन्हें शंघाई की अंतर्राष्ट्रीय बस्ती में भी लागू किया जाए। विदेशी लोग इसके लिए सुगमता से तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने इस सिद्धांत को अवश्य स्वीकार कर लिया कि संपूर्ण चीन में एक ही प्रकार के श्रम संबंधी कानूनों का प्रयोग करना उपयोगी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया इस सिद्धांत को क्रिया में परिणित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार किमिंगतांग सरकार के प्रयत्न से विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व से छुटकारा पाने में चीन बहुत अंश तक सफल हुआ। पर चीन के दुर्दिनों का अंत नहीं हुआ था। किमिंगतांग सरकार को चीन में जिन विरोधी शक्तियों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा वो जारी थी। 1931 में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। इस कारण चीन को इन युद्धों में भी भाग लेना पड़ा, जिस कारण वह अपनी आंतरिक उन्नति पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। पर इससे चीन काफ़ी हद तक वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस और उसके बाद के समझौतों से सफल हुआ कि विदेशी प्रभुत्व के प्रभाव को अंत कर पूर्ण रूप से चीन में चीनी सरकार का प्रभुत्व व संगठन स्थापित किया जाए। और अपने उद्देश्य में चीन काफ़ी हद तक सफल भी रहा।